ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले की केंद्रीय समिति बैठक में संगठनात्मक व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। संघीय निजामती सेवा विधेयक और नेपाल नागरिकता दूसरा संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए विधायन प्रबंधन समिति में भेजने को राष्ट्रीय सभा से स्वीकृति। गुलमी जिले में लगभग 200 बस्तियां बाढ़ और भूस्खलन के उच्च खतरे में और कुपोषण और भूखमरी के कारण गजा में 21 बच्चों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले की 9वीं केंद्रीय समिति की आज की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी सहित संगठनात्मक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ललितपुर स्थित एमाले केंद्रीय कार्यालय च्यासल में जारी दूसरे दिन की बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौड़ेल के विधान संशोधन प्रतिवेदन और महासचिव शंकर पोखरेल के संगठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदन पर 58 लोगों ने अपने विचार रखे। प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अभी 77 सदस्यों को अपना मत रखना बाकी है। प्रचार विभाग प्रमुख गौतम ने बताया कि आज की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के एमाले की सक्रिय राजनीति में लौटने, पार्टी सदस्यता और संगठित सदस्यता की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। गौतम ने यह भी जानकारी दी कि बैठक में सरकार की प्रभावशीलता, मुद्रास्फीति जैसे विषय पर भी केन्द्रीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यों ने पूर्व राष्ट्रपति की पार्टी सदस्यता नवीकरण और पार्टी में पुनः प्रवेश के मुद्दे को उठाया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 और नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 को धारावार चर्चा के लिए विधान व्यवस्थापन समिति को भेज दिया गया। बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भगवती न्यौपाने द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, जिसमें प्रतिनिधि सभा द्वारा भेजे गए संघीय निजामती सेवा विधेयक को समिति में भेजने की मांग की गई थी। इस विधेयक पर राष्ट्रीय सभा के 43 सांसदों द्वारा 16 संशोधन प्रस्ताव दिए गए। इसी बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 को भी धारावार चर्चा के लिए विधान व्यवस्थापन समिति को भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने सांसद गोपाल भट्टराय को राष्ट्रीय सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में नियुक्ति को मंजूरी दी। गृहमंत्री रमेश लेखक ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के लिए अब तक 3,95,66,50,000 रूपये की सहायता वितरित की जा चुकी है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दहाल ने भेरी कॉरिडोर के जाजरकोट डोलपाखंड में 13 पुलों में से 5 पुलों के निर्माण को अगले 2 वर्षों में पूरा करने की योजना की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रीजी गार्ड खोला, चुगार्ड खोला, उसुम खोला और गली गार्ड खोला सहित 8 पुलों का निर्माण अगले 3 वर्षों में किया जाएगा। बैठक में सांसदों ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़ भूस्खलन से हुई क्षति और मधेश में सूखे की स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक श्रावण 11 गति सवा 1 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ चीन के अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता नियोग सिडका के अध्यक्ष चेन सियाओ देंग के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आज शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई भेंट में द्विपक्षीय समझदारी और विगत में 2 देशों के बीच उच्च स्तरीय भ्रमण के दौरान हुए विकास सहकार समझौतों के क्रियान्वयन लगात विषय पर विचार विमर्श हुआ। मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल और चीन के बीच लंबे और मित्रवत संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि नेपाल एक चीन नीति को लेकर प्रतिबद्ध है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने कहा है कि मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की आज हुई बैठक में मंत्री चौरसिया ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को सरकार प्राथमिकता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार से जुड़े कानूनों को समयानुकूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है और सरकार इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे रही है। सांसदों ने चिंता जताते हुए कहा कि मानवाधिकारों का व्यावहारिक क्रियान्वयन अभी काफी कमजोर है। उन्होंने नीति निर्माण के स्तर पर गंभीरता बरती जाने और सरकार तथा आयोग को मानवाधिकार संवर्धन के लिए मजबूती से प्रयास करने की मांग की। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ ने जितनी जल्दी हो सके 5G नेटवर्क को सुचारू रूप से लागू करने का नेपाल टेलीकॉम और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को निर्देश किया है। आज मंत्रालय में नेपाल टेलीकॉम और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के 2082-83 के वार्षिक बजट और कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान मंत्री गुरूङ ने कहा कि 4G के विस्तार को व्यापक बनाते हुए 5G नेटवर्क की शुरूआत तुरंत की जानी चाहिए। मंत्री गुरूङ ने कहा कि इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं में समस्याएं आने पर सरकार के डिजिटल फ्रेमवर्क के उद्देश्य पूरे होना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि अगर सेवाएं सुचारू नहीं हुई तो जनता को बेहतर सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और डिजिटल शासन स्थापित करने में चुनौतियां आएंगी। उन्होंने दूरसंचार विस्तार में किसी भी तरह की ढिलाई न करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेशनल लैंड कवर मैप 2022 भू आवरण नक्शा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में साझा किया। वन तथा वातावरण मंत्रालय वन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रकाशित भू क्षेत्र नक्शा केंद्र के निर्देशक डॉ राजेंद्र केसी ने राष्ट्रपति पौडेल को प्रदान किया था। मौके पर राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि कागज में जिस तरह नक्शा में जंगल है उसी तरह फील्ड में भी बहाल होनी चाहिए। नेपाल के पहले जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के योगदान को याद करते हुए 43वां बीपी स्मृति दिवस आज मनाया गया। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि नेपाल की राजनीति बीपी कोइराला की राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि बीपी कोइराला ने अपना पूरा जीवन देश और जनता के लिए समर्पित कर दिया और लोकतंत्र के पक्ष में अड़िग रहे। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा है कि सरकार आपदा प्रबंधन, खोज, बचाव और राहत कार्यों में अत्याधुनिक प्रविधि का उपयोग करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। आज गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण और नेपाल ड्रोन संघ के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर गृहमंत्री लेखक ने कहा कि अब आपदा प्रतिक्रिया के दौरान खोज बचाव, राहत सामग्रियां, दवाएं और पानी आदि ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। गृहमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर एसोसिएशन के साथ भी आपदा प्रबंधन के तहत मुफ्त हवाई बचाव कार्यों से संबंधित समझौता किया था। जंगली मशरूम खाने से रुकुमपुर्व में एक बच्चे की मौत हो गई है और 3 लोग बीमार पड़ गए हैं। रुकुमपुर्व की भूमि गांव पालिका वार्ड नंबर 5 सेराबाग की 35 वर्षीय राजकुमारी सोनार, उनकी 9 वर्षीय बेटी आयुषा, 6 वर्षीय भाग्यरेखा, 3 वर्षीय बेटा योजन मशरूम खाने से बीमार हो गए थे। इलाज के दौरान योजन की मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक जिला अस्पताल सल्यान में इलाज के दौरान आज दोपहर योजन की मौत हुई है। वहीं राजकुमारी और उनकी बेटी भाग्यरेखा की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इलाज के लिए दांग भेजा गया है। बता दें कि सोनार परिवार ने बीते शुक्रवार की शाम को मशरूम खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। गुलमी में करीब 200 बस्तियां बाढ़ और भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं। जिला आपदा पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार योजना 2082 के मुताबिक जिले के करीब 200 स्थान बाढ़ व भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं। बता दें कि जिला आपदा व्यवस्थापन समिति ने बरसात में बाढ़ व भूस्खलन से 22,000 से अधिक नागरिकों के बुरी तरह प्रभावित होने का अनुमान किया है। डिवीजन वन कार्यालय परसा ने पटेरवा सुगौली वार्ड नंबर 2 में अतिक्रमित जमीन वापस लेकर उसमें वृक्षारोपण किया है। स्थानीय साझेदारी वन की करीब 6 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करके आम लोग उस पर खेती कर रहे थे। उन जमीनों को वापस लेकर उन पर विभिन्न 5 प्रजातियों के 10,000 पौधे लगाए गए हैं, ये जानकारी वन कार्यालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा स्थित शिफा अस्पताल के निर्देशक डॉ मोहम्मद अबू सलमिया ने बीबीसी को बताया कि पिछले 72 घंटों में इस इलाके में कुपोषण और भूख से 21 बच्चों की मौत हो गई है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि गजा में करीब 9 लाख बच्चे भूख से पीड़ित हैं और उनमें से करीब 7,000 कुपोषण का शिकार हुए हैं। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि उन्हें मौतों के खतरनाक आंकड़ों का सामना करना पड़ रहा है। मधुमेह और गुर्दे के रोगियों को विशेष खतरा है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुपोषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या के बारे में और अधिक आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 48 घंटों में 12 बच्चों सहित 33 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि 1923 में युद्ध शुरू होने के बाद से कुपोषण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 101 है, इसमें से 80 बच्चे हैं। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले की केंद्रीय समिति बैठक में संगठनात्मक व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। संघीय निजामती सेवा विधेयक और नेपाल नागरिकता दूसरा संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए विधान प्रबंधन समिति में भेजने को राष्ट्रीय सभा से स्वीकृति। गुलमी जिले में लगभग 200 बस्तियां बाढ़ और भूस्खलन के उच्च खतरे में और कुपोषण और भुखमरी के कारण गजा में 21 बच्चों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।